ओम शांति। हमारे बीच राजयोगी भ्राता करुणा जी उपस्थित। राजयोगी करुणा भ्राता जी के बारे में अगर कुछ कहना चाहूं तो पांडव भवन की उन चार दीवारियों से निकलकर शांति वन तक का जो सफर यज्ञ में विकास के नाम पर हुआ है उसमें आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और आपने न केवल इस विकास की हर सीढ़ी पर अपना अगला कदम रखा है वरन दादी के साथ साथ अंग संग रह करके बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ यज्ञ को दिया है। दादी की पालना में क्योंकि दादी थी तो सदैव देती रही, बच्चे कहते रहे दो और दादी ने दिया। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहते हैं द और दी, तो द माने मांगते हैं और दादी हमेशा देती आई। मैंने खुद भी देखा है कि आदरणीय भ्राता करुणा जी ने जब देखा कि हम कहीं पिछड़ रहे हैं विकास के पथ पर तो दादी जी से आग्रह करके आपने एक बहुत बड़ी सुविधा समाज को ब्राह्मण कुलभूषणों को मुहैया कराई, वो थी टेलीफोन एक्सचेंज की और वो भी सैटेलाइट के माध्यम से। संस्था ने एक कदम आगे बढ़ाया कि जिसमें देश और विदेश में कहीं भी आप किसी भी मोड़ पर संपर्क कर सकें। दूसरा कदम जो आप देख रहे हैं टीवी चैनल्स के माध्यम से घर घर पहुंच करके आज बाबा का ज्ञान पहुंच रहा है, कोई ऐसा नहीं जो कह दे मैं ब्रह्मा कुमारी इसको नहीं जानता। उस दिशा में भी जी टीवी के माध्यम से आपने पहला कदम उठाया और आज सबसे बड़ी उपलब्धि पीस चैनल आपके सामने है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कहां तक संभव है वो आप खुद ही समझ सकते हैं जब आप अव्यक्त बाप दादा को अपने आश्रम पर अपने यहाँ न यहाँ होते हुए भी वहां देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को आपने एक नई दिशा दी, नए ढंग से उसको संवारा और आईटी एक अलग से प्रभाग बन गया। तो आपने उस वैज्ञानिक युग को आध्यात्म के साथ कदम कदम पर समन्वय किया और दादी जी के साथ आपका सानिध्य मैं समझती हूँ कि कोई शाम ऐसी न होगी कि जब करुणा भाई दादी जी से न मिले हों, बल्कि शांति वन में पांडव भवन की तरह आंगन में जैसे बैठकर दादी मिला करती थी, शांति वन में दादी कॉटेज के बाहर दादी चेयर्स डलवा लेती थी और करुणा भाई हमारे आतम भाई जो ज्ञानमृत के संपादक हैं और भी बड़ी बहनें बड़े भाई वहां एकत्र हो जाते थे। तो प्रति पल का अनुभव इतिहास में लिखने वाला नहीं बल्कि जीवन के अनुभव में जीने वाला और जीवन में उतारने वाला अनुभव उनके पास है। मैं बहुत देर आपके और उनके बीच में नहीं रहूंगी, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका स्वागत कीजिए, वो अनुभवों से आपको आज तरह बोर करेंगे। आदरणीय करुणा भाई ओम शांति।
ओम शांति। इस महान यज्ञ के इतिहास में जो पहली लाइन में लिखे तो ये लिखा जाएगा कि भगवान ने बहनों को आगे रखा और आपने देखा बहनें भी भाइयों को कैसे आगे रखते हैं, तो ये इनकी विशेषता है। इस यज्ञ की महान सफलता में भी हम यही कह सकते हैं कि बाबा ने बहनों को आगे रखा और बहनों ने भाइयों को आगे रखा, तो तब ये आज विश्व भर में ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय सफलतापूर्वक 76 ईयर्स से निर्विघ्न कार्य कर रही है। इसलिए हम सबको आज हमारे जो दादी जी ने कैसे इस संस्था को साकार बाबा के पश्चात सारे विश्व तक पहुंचाया, साक्षी रूप से मैं देखता रहा और दादी जी के साथ ही साथ रहने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सन 1960 में आया था, साकार बाबा से मिलने। मन में यही प्रश्न था कि मुझे देखना है वो कौन सी महान हस्ती है जिनके अंदर स्वयं भगवान अवतरित होकर के फिर से गीता का ज्ञान हम बच्चों को सरल भाषा में सुनाया। बेंगलुरु से आबू तक इसी एक प्रश्न को लेके आया था, परंतु मेरा सौभाग्य पहले मैं मम्मा से मिला, बाबा से बाद में मिला। मम्मा से मिलते ही पहले शब्द मम्मा के मुख से निकला कि ये तो कलप पहले वाला बच्चा है। मम्मा को तब मालूम था जब पहली बार की मुलाकात में और पहला शब्द जो बोला, जो आज मैं आप सबके सामने बैठा हूं, तो मम्मा को मालूम था। अर्थात मम्मा में परखने की शक्ति थी, मम्मा जानती थी ये आत्मा कौन है। तो मम्मा से जो भी मिले होंगे उनको ये अनुभव होता था। तो उस समय पर जो हमारे हृदय से निकला मां, तो वही मां है जो हम सबका, जो आने वाली सृष्टि का, जो निर्माता बाप दादा के साथ जो मां बनकर रही, उनसे जैसे मुझे अपना पुनर्जन्म मिला। परंतु ये जो प्रश्न था कि बाबा के अंदर, ब्रह्मा बाबा के शरीर में या ब्रकुटी के बीच में शिव बाबा आते हैं, तो ये प्रश्न लेकर जब मैं वहां आया था, तो जैसे ही ब्रह्मा बाबा को देखा मेरे सब प्रश्न गायब हो गए। क्या पूछना क्या कहना ये तो भूल गया, इतना आत्मा के अंदर खुशी थी कि जैसे मुझे सब कुछ मिल गया। गुरु हो तो ये, बाप हो तो ये, सखा हो तो ये, इस जन्म के लिए यही हमारा सर्वस्व है। ये अनुभव पहली नजर से बाबा से हुआ, जिसको कहते हैं लव इन फर्स्ट साइट। तो ये अनुभूति मुझे साकार बाबा से पहली बार, पहली मुलाकात, पहली नजर से ही अनुभूति हुई। जब तक मम्मा थी, विशेष बाबा ने मम्मा को बैंगलोर भेजा था और मम्मा ने सारे साउथ की सेवा का जन्मदाता बनी। और क्योंकि बाबा को डॉक्टर्स छुट्टी नहीं देते थे, तो इसीलिए बाबा साउथ में कभी नहीं आए। भले लौकिक के समय पर बाबा मैसूर महाराजा के साथ भी व्यवहार करते थे, धंधा करते थे डायमंड्स के, परंतु शिव बाबा की प्रवेशता के बाद नहीं आए, परंतु मम्मा को बाबा ने दो बार साउथ में भेजा। मम्मा 3 मास रह करके वहां सेवा की, तो मम्मा के अति समीपता 65 के बाद बाबा ने माँ और बाप की दोनों पार्ट बजाते हुए हम सब बच्चों को अपने दिल में लगाया। दोनों की पार्ट कैसे बाबा बजाए वो भी एक विचित्र अनुभव था। हमको महसूस होने नहीं दिया कि माँ मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती नहीं है, ऐसा महसूस होने नहीं दिया। हमको घड़ी घड़ी याद कराते थे बाबा, बच्चे तुम्ही तो गाते थे त्वमेव माताश्च पिता, तो वही माता तो तेरे सामने खड़े है। तो बाबा ने हमको साकार बाबा ने पालना दी 69 तक, 9 साल तक साकार बाबा के साथ रहने का अत्यंत आनंद अनुभव रहा। ड्रामा 69 में बाबा अव्यक्त होते हुए अपना हाथों में हाथ दादी जी का लेकर के सर्वशक्तियां प्रदान करते हुए दादी जी को निमित्त बनाया, परंतु हमारा दादी जी के साथ पहला अनुभव था साकार बाबा होते हुए। मुझे बेंगलोर से मुंबई में टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग के लिए 15 दिन रहना पड़ा, तो मैंने बाबा से पूछा, बाबा मैं भोजन कहाँ करूं, क्योंकि ब्राह्मणों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो भोजन का होता है। तो बाबा हंसते हुए कहा, बच्चे हमारी मीठी मीठी प्यारी प्यारी कुमार का बेटी है, वो आपको खिलाएंगी। तो मुझे नहीं मालूम था कुमार का दादी कौन है, मुरली में जरूर सुनते थे, बाबा दादी जी की बहुत महिमा करते थे, 1 स्पीकर है, किसी VIP को समझाना है तो दादी जी का नाम जरूर लेते थे, कहीं विशेष मिलने के लिए किसी के पास भेजना हो तो कुमार का दादी का नाम पहले आता था, और पहली विदेश सेवा की यात्रा के लिए भी बाबा ने कुमार का दादी को भेजा था, आप सबको हिस्ट्री में मालूम होगा। परंतु मेरा जो पर्सनल मुलाकात, आप सोचो जो विश्व माँ बनी, वर्ल्ड मदर बनी, ऐसी दादी जी के साथ मेरा पहला परिचय है, तो मुझे दादी जी खाना खिलाएगी ऐसा बाबा ने कहा। तो मैं जब पहुंचा बॉम्बे में, जब सेंटर पे गया, तो आप जानते हैं समय पर तो नहीं पहुंच पाते हैं कभी देर से, पर दादी जी स्वयं इंतजार करते हुए अपने हाथ से रोटी बना करके तो दादी ने खिलाया। उस समय पर मुझे ये सपन में भी नहीं कि एक दिन यही दादी विश्व की माँ बनेगी, परंतु ऐसी माँ के हाथ से खाने का सौभाग्य मुझे साकार बाबा ने दिया, और दादी जी ने 15 दिन बहुत प्यार से खिलाया। तो मैंने उनके अंदर जो पहली विशेषता ये देखी कि खुद सब कुछ काम अपने हाथ से करती थी, भले छोटी बहनें थे उनको कहेगी कि तुम रेस्ट करो, परंतु खुद इंतजार करते हुए किसी भी समय पर आए दादी खिलाए। ये जो दादी जी की विशेषता हर कार्य अपना हाथ से करके दिखाना, क्योंकि साकार बाबा के अव्यक्त होने के बाद 71 में दादी जी ने मुझे यहां मधुबन में बुलाया, तो दादी जी जहां हम बेंगलुरु में सेवा करते हैं तो वहां भी बाबा ने दादी और दीदी साकार बाबा होते हुए दोनों को भेजा था। जब वहां के गवर्नर पहली बार यज्ञ की हिस्ट्री में दक्षिण में एक गवर्नर के पद से एक व्यक्ति आए और उनकी सेवा के लिए बाबा ने कुमार का दादी और दीदी दोनों को भेजा था, तो मैंने वहां देखा कि दादी जी की प्रभाव कितना है। आप सबने अखबारों द्वारा टेलीविजन द्वारा तो ये जरूर सुने होंगे, अब्दुल कलाम जी यहां आए थे, दादी जी से मिलके जा रहे थे तो उनको मैसेज मिला आपको भारत के प्रेसिडेंट के लिए नियुक्त किया जा रहा है। तो सारे अखबार वालों ने टीवी वालों ने उस समय पर बताया कि देखिए दादी जी के आशीर्वाद से अभी ये प्रेसिडेंट बन रहे हैं। प्रतिभा पाटिल के लिए भी ऐसा ही हुआ, जब यहां से दादी जी से मिलके जा रहे थे तो उसी समय सबको मालूम पड़ा कि इनका नाम प्रेसिडेंट के लिए दिया गया है। तो सब जगह सारे मीडिया सब लोगों ने कहने लगे कि दादी जी का आशीर्वाद लो तो आपका प्रमोशन हो जाएगा, तो इस प्रकार की एक समाचार फैल रहा था। पर मैं आपको ये बता रहा हूं, तो जब साकार बाबा होते हुए दादी जी को बाबा ने बेंगलुरु भेजा था तो उस समय पर जो वीवी गिरी गवर्नर थे, थोड़े से समय के बाद दादी जी से मिलने के बाद वो भी भारत के प्रेसिडेंट बने, तो बहुत लोगों को ये मालूम नहीं था। इसी तरह से वहां का कर्नाटक का चीफ मिनिस्टर थे जत्ती साहब, बीडी जत्ती कहते हैं, तो जत्ती साहब भी दादी जी से मिले और वो भी वाइस प्रेसिडेंट बन गए थे। मेरा कहना ये है कि दादी जी के अंदर ये जो प्रभाव शक्ति हमने देखा, तो उनका आशीर्वाद से कैसे भले ज्ञान में नहीं है पर भावना दादी जी के आशीर्वाद से कैसे उन लोग के जीवन में उन्नति होती रही, ये भी हम लोगों ने प्रैक्टिकली देखा था। तो इसलिए बाबा को जहां कहीं भी विशेष सेवा करना हो तो दादी जी को जरूर भेजते थे। तो फिर क्या, तो दादी जी के अंग संग रहने का 35 साल दादी जी के साथ रहने की जो सौभाग्य मुझे मधुबन में मिला, तो आप समझ सकते हो बाबा मम्मा के डायरेक्ट पालना के बाद दादियों के साथ अपने को कैसे चले, क्योंकि ये अभिमान तो था कि हम तो बाबा मम्मा के बच्चे हैं, बाबा मम्मा से पालना लिए हुए हैं, अब दादियों के साथ कैसे चले, तो ये हमारे लिए, हमारे साथ निर्वर भाई जरूर थे, फिर भी थोड़ा सा मन में आता था, समझो अभिमानी है कि हम पढ़े लिखे हैं, हम दुनिया को जानते हैं, दुनिया में सब किए हुए हैं, बाबा मम्मा के गाइडेंस से सब कुछ कार्य किए हैं, पर दादी जी के एकमात्र विशेष गुण जिसको हम कहते हैं नम्रता और निर्माण, ये दो गुण ने कोई भी व्यक्ति दादी के सामने आए, कितने भी बड़े हो, चाहे वो धर्म के लोग हैं, चाहे पॉलिटिकल लोग हैं, चाहे प्रशासन के जो बड़े हैं, मैंने ये देखा दादी जी के सामने आते ही जो दादी जी की जो दोनों हाथ जोड़ करके जो नम्रता से जो दादी जो मुस्कुराते हुए स्वागत करते थे वो सब पानी पानी हो जाते। तो हमारे लिए भी ज्यादा समय नहीं लगा, बहुत ही थोड़े समय में दादी जी की ये महान गुण को देखते हुए हम सभी जैसे दादी जी के साथ भी जैसे बाबा मम्मा के साथ जी बाबा जी मम्मा कहते थे, जी दादी जी कहने का एक जैसे अपने अंदर ऑटोमेटिकली हुआ, ऐसा लगा ही नहीं हमको तो मम्मा नहीं या बाबा नहीं, परंतु दोनों का एक प्रतिस्वरूप जैसा। मम्मा जैसे हमको शिक्षा देती थी, जैसे माँ बच्चों को हाथ पकड़ के सब कुछ सिखाती थी, और जैसे बाबा शिक्षा देते थे, तो इसी प्रकार दादी में दोनों गुण था। जब दादी का क्लास सुने आप, मम्मा से कम नहीं था। जैसे मम्मा के लिए गायन है, सरस्वती है, तो इसी प्रकार आज भी सुबह मैंने संस्कार परिवर्तन के एक मुरली दादी सुना रही थी, तो वो पूरा 48 मिनट्स का था, पूरा मैंने सुना, इतना अच्छा लगा मुझे। मैंने काउंटर में भी पूछा कि भाई ये कैसेट है आपके पास, तो उन्होंने बताया है। तो मेरा कहने का है कि दादी की स्पष्टता और जो एक एक शब्द जो दादी बोलती है वो जैसे दिल को छू जाता था। तो शिक्षा में भी जब क्लास कराती है, जब भाषण देती है, तो जैसे बाबा मम्मा का दोनों रूप जैसे दादी के अंदर दिखाई देता था। तो जिस प्रकार दादी सारा दिन जो हम सबसे व्यवहार करती थी, इतनी प्यार से, इतनी रेस्पेक्ट से, भले ब्रह्मा बाबा से हम लोग थोड़ा कुछ भावनार्थ, स्वयं भगवान का ये तन है, रथ है, तो उस भावना में हम लोग थोड़ा सा आगे पीछे हो जाते थे, परंतु दादी जी ने ऐसी एक विशेषता उनके अंदर, भले वो छोटे हैं या बड़े हैं, पर इतना प्यार से आगे रखने की जो इनकी कला जो थी वो हम लोग जितनी भी सीखे उतना कम है। हम सब में एक विशेषता जरूर होती है, कोई बात दिमाग में आ जाती है, कोई संकल्प दिमाग में आ जाते हैं, हम सब क्या करते हैं, तुरंत उसको करने जाते हैं। ये हम सब का नेचर है, हमको लगता है ये तो अच्छा है, ये तो करना चाहिए। आज बाबा ने मुरली में कहा या किसी ने कहा, अपनी दिमाग में आ गया तो तुरंत कर लेते हैं। पर हमारे दादी जी, मैंने उनसे यही सीखा, भले दादी जी को दृढ़ संकल्प बाबा टच किया, दादी है, चीफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो कार्य कर सकती है, हमको ऑर्डर दे सकती है, क्योंकि हम लोग दादी से इतना प्रभावित थे तो जी हां के अलावा और कुछ नहीं आता था। परंतु जैसे ही दादी सुबह मिलेगी, मेरा कम से कम 3 बार दादी से मिलता था मैं दिन में, जब तक 3 बार नहीं मिलता हूं दिन जैसे खाली गया ऐसा लगता है। भले दादी जी का भोजन कभी कभी दो दो तीन तीन बज जाता था दिन में, मैं अकेला ही बाहर स्टूल पे बैठा रहता था, कुर्सी पे बाहर पांडव भवन के गेट पे, जब तक दादी बाहर नहीं आई, दादी के दृष्टि नहीं मिली। और दादी हमसे सदा ही एक ही क्वेश्चन पूछती है, दुनिया में सब ठीक है? क्योंकि दादी को पता है कि मैं थोड़ा सा मीडिया से जुड़ा हुआ हूं, मुझे पीआरओ कहते थे, पर दादी कहती है प्यारो। तो दादी जब तक ये नहीं पूछेंगी कि भाई दुनिया में क्या हालत है, तो दादी को थोड़ा कुछ सुना करके, दादी जी का दृष्टि लेकर के, इसके बाद मैं जाता था। तीन बार तो कम से कम मैं दादी जी से मिलता था। इसी प्रकार जब भी पहले पहले मिलेंगे तो दादी अपने संकल्प को जरूर सुनाएंगी कि मुझे आज ये विचार आया तो आपको कैसा लगता है। अरे दादी चीफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हेड है, तो दादी पूछती है मेरे से। सिर्फ मेरे से नहीं, जो भी दादी को मिलेंगे हमारे सीनियर्स भाई बहने, सबसे पूछेंगी, एक एक से बोलेंगी। सबसे राय करने के बाद भी जब क्लास कराने आएंगी तो क्लास के बीच में भी दादी कहेगी कि आज मुझे ये विचार आया, तो आप सभी बताओ कि आप सबको कैसे लगता है। अरे, और सभी हाथ उठाए, सभी कहे दादी हाँ ये जरूर होना चाहिए, उसके बाद दादी कहती थी अच्छा अभी हम सब प्लान करें इसको, निर्भय भाई को कहेंगे, रमेश भाई को कहेंगे, सबको कहेंगे कि अभी आप लोग प्लान करो तो ये कार्य करना है, जैसे प्रदर्शनी है आदाद, जो भी नया जो प्लान है, नई सर्विस जो है। दादी कभी अपने संकल्प को, अपने विचार को एक आज्ञा के रूप में नहीं दिया, बल्कि छोटे बड़े सबसे। कई बार हमको ये लगता था कि भाई दादी इनसे भी पूछती है, इनसे भी करती है। यही आश्चर्य की बात है कि दादी सबसे पूछती थी और सबके संकल्प को लेकर के इसके बाद उस कार्य को करती थी। तो उसी इस एक गुण के कारण जो दादी की कोई भी संकल्प है वो हो जाता था। आप सबको मालूम है जो सबसे बड़ा संकल्प जो दादी ने किया था, वो अचानक एक दिन दादी कहती है, क्या ऐसा कभी हो सकता है जो बाबा का 1,00,000 का सभा हो? तब तक कभी ज्यादा से ज्यादा 10,000, 15,000, ज्यादा से ज्यादा कहीं हुआ हो तो हो सकता है, पर 1,00,000 का सभा ये तो कभी हम सोच भी नहीं सकते थे। पर दादी को संकल्प आया कि ऐसी सभा करो जो 1,00,000 लोग एकत्रित हुए और वहां बाबा का संदेश दिया जाए। सबसे पूछा, सबको संकल्प दी, होना चाहिए, करना चाहिए, इसके लिए तो सबने हाथ उठाया, परंतु कौन करेगा? जब प्रश्न आया तो केवल गुजरात वालों ने उस समय पर हाथ उठाया, सरला दीदी ने। और दादी जी का संकल्प और 1,25,000 से ज्यादा वहां लोग आए और जो महामेला जो है उसका आरंभ गुजरात से शुरू हुआ और सचमुच देखने लायक था। और वो सीन सदा ही हमारे दिल में बसा हुआ रहता है, दादी जी का संकल्प देखो आज कैसे बाबा ने दिखा दिया है। और इसी प्रकार की फिर दादी ने कहा तो आप लोग भी करो तो आप लोगों को भी बाबा मदद करेगा। सचमुच सारे भारतवर्ष में महामेला चलता रहा और लाख से ज्यादा ही लोग हर स्थान पर आए, जो हम कभी भी सोच नहीं सकते, आज भी हम नहीं सोच सकते, पर दादी जी का संकल्प था और बाबा ने कार्य पूरा कर दिया। तो संकल्प शक्ति क्या होता है, जो बाबा कई बार हम बच्चों को कहते हैं, बहुत हुआ वाचा की सेवा, बहुत हुआ मेले जमेले सब कर लिए, तो बाबा कई सालों से हम बच्चों को कहते हैं अभी संकल्प से सेवा करो। तो आपकी तपस्या की सिद्धि संकल्प से है, किसी के लिए आप भला सोचते हो तो उनका हो जाता है, तो देवता देने वाला तो आशीर्वाद उनसे पूरे कल्प में मांगते हैं देवताओं से, तो वही देवताएं हम बैठे हैं। तो बाबा कहते हैं ये समय वो है जो संकल्प से सेवा करने का, जो दादी जी एक संकल्प करती थी और वो हो जाता था। दादी के अंदर एक बहुत बड़ी और विशेषता हमने देखी थी, हम सब समझते हैं बाबा हमारा साथ है, गीत भी है ना, बाबा हमारे साथ है। बाबा कई बार कहते थे कि भाई शिव बाबा को अपना कंपेनियन बनाओ, साथी बनाओ। हमने देखा साकार बाबा अव्यक्त होने के बाद भी दादी बाबा से संदेश लेती थी, बात करती थी बाबा से, ये हमने अपना आंखों से देखा है। वैसे आप सभी जानते हैं दादी जी का हिस्ट्री, जब पहली बार दादी छोटी कन्या थी, हाई स्कूल के बाद बाबा से मिलने आई तो बाबा की एक नजर से श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। उसके बाद दादी ने अपना पूरा जीवन बाबा को दिया। तो इसके बाद कभी दादी ने साक्षात्कार नहीं किया, जैसे मम्मा के लिए कहा जाता था, मम्मा कभी ध्यान में नहीं गई है, साक्षात्कार नहीं हुआ है। दादी को एक बार जरूर हुआ था, जब पहली बार आई थी बाबा को देखा था, बाकी कभी दादी को साक्षात्कार नहीं हुआ। परंतु मेरा पर्सनल भी अनुभव भी है, जो दादी जी के अति समीप रहे उनका भी यह अनुभव है कि दादी जी जब भी बाबा का कमरे में जाती थी, विशेष जब कभी भी मधुबन से बाहर जाना होता है सेवा के लिए, तो पहले दादी बाबा से छुट्टी लेती थी बाबा का कमरे में, तो हम लोग भी चुपके से दादी के पीछे खड़े होते थे कि दादी कैसे बाबा से बात करती है, तो किस तरह से, जैसे हम कहते हैं कि अभी भी ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन में है, संदेशी जाती है, उनसे बात करती है, शब्द तो है नहीं परंतु संकल्प से कैसे आपस में बात करते हैं और नीचे आकर के हमको शब्दों में सुनाते हैं। और हम बच्चों को भी बाबा कहते हैं कि भाई आप भी बाबा से बातें कर सकते हो, पर हमने सदा देखा था दादी जब भी बाबा के कमरे में जाती, बाबा संदेश दादी को देते थे और हम सभी बाहर फिर खड़े होते थे, अभी दादी बाबा का कमरे से आएंगे और बाबा का संदेश देगी। और सचमुच दादी कहती थी कि मैंने बाबा को सुनाया, बाबा मैं यहां जा रही हूं, फिर बाबा दादी को सुनाते थे कि वे बच्चे वहां जाकर के उन बच्चों को ये कहना आपको ये कार्य करके आना है तो ये बाबा ने मुझे आज्ञा दी है। तो ये शब्द दादी हर बार सुना के जाती थी। तो दादी स्वयं अपना अनुभव को हम सबके सामने सुनाती थी। बाबा ने सुनाया। मैं आपको एक विशेष बात दादी के लिए सुनाऊं। दादी ओपन सभा में कहती थी, पता नहीं हम कितने लोग ये कह सकते हैं ये शब्द, बड़े बड़े जैसे ज्ञान सरोवर जब से बना, जब से ये विंग्स की सेवा हुई और वहां जो अच्छे अच्छे बड़े जो हर विंग के लोग आते थे और उनके सामने पहली बार ज्ञान सुने हुए हैं लोग, और हर सेशन में हर कॉन्फ्रेंस में दादी एक भाषण करती थी, और मैंने खुद सुना है उन सब के सामने दादी कहती थी कि देखो हमने अपने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला है, चाहे बचपन में चाहे विद्यार्थी के रूप में चाहे बाबा के बनने के बाद। दादी की ये फाइनल वर्ड्स होते थे कि दादी ने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला है। जब दादी सुनाती थी जो सभी सभा में लोग इतने खुश होते थे कि कितनी महान आत्मा है ये जो स्वयं कह सकती है दिल से सच्चाई से कि हमने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला है। तो आप कहेंगे ये तो ठीक है, पर दादी जी की वचन की क्या शक्ति थी वो भी हमने देखा जो पहली बार आए हैं मधुबन में कॉन्फ्रेंस में, और ऐसे लोगों से दादी प्रतिज्ञा कराती थी। वैसे जिंदगी में बहुत बार कोशिश किया होगा वो लोग जब बीड़ी सिगरेट शराब गुटखा जो भी ऐसी वो आदतें हैं तो वो छोड़ने की प्रयास भी की होगी पर नहीं छोड़ पाए। पर दादी जी क्लास में इतनी प्यार से मुस्कुराते हुए जब कहती थी कि देखो आप सब कौन है, किसके बच्चे हो, कहां आए हो, तो कुछ तो छोड़ के जाना पड़ेगा, तो पहले दादी उनको खुश करा देती थी। तो बताते नहीं कि भाई क्या छोड़ना होगा, पर इतनी प्यार से सबको तैयार करा देती और फिर दादी कहती थी कि देखो पक्का दादी को पक्का देके जाएंगे। तो फिर दादी इनको कहती थी कि जिनकी भी ये आदत है वो आज यहां बाबा के सामने दादी जी के सामने आप प्रतिज्ञा करेंगे कि भाई दोबारा हम ये नहीं टच करेंगे। और ऐसे आत्माएं अभी अभी हाथ उठाए तो दादी हाथ उठाती थी उनसे। हमने देखा 90% तक लोग बड़े दिल से बड़े खुशी से अपना हाथ उठाते थे और दादी इनको पक्का कराते थे। ऐसा नहीं कि मुझे कुछ करने के लिए कर रहे हो, तो सचमुच आपको अपनी दिल से करना है, और दोबारा उठाती थी। तो ये एक बहुत बड़ी विशेषता हमने देखी। दादी के सामने जितने भी बड़े लोग होंगे वो भी इतनी छोटे बन जाते थे, प्यारे बन जाते थे जो अपना हाथ उठा लेते थे। भगवान के सामने तो हम सभी बच्चे पता नहीं कितनी बार हाथ उठाए हैं। अव्यक्त बाबा को हाथ उठाने में बहुत मजा आता था, पर दादी जी के सामने भी फर्स्ट टाइम आए हुए बड़े बड़े लोग भी जो कभी जिंदगी में वो कर नहीं पाते थे तो वह दादी के सामने वायदा करके जाते थे, फिर दादी जी से फिर मिलने आते थे, तभी भी ये बोलते थे कि दादी जी आपने जो कहा था तो इसके बाद दोबारा हमने कभी। और मैंने ये भी आश्चर्य देखा था दादी जी का, कभी हम ये नहीं सोचते कि और तो सारा ज्ञान दे देते हैं, पूरा समझा देते हैं हम लोग, प्रदर्शनी क्या, 7 दिन का कोर्स क्या, सब कुछ, पर ब्रह्मचर्य के बारे में बताने में थोड़ा सा आगे पीछे करते थे, सीधा किसी को डायरेक्ट बताते नहीं है। तो मुरली सुनते जाएंगे, ये धारणा करते जाएंगे और धीरे धीरे बनते जाएंगे, क्योंकि आप सब पवित्र युगल बाबा के बेटे हैं, आप सबको अनुभव है, तो धारणा में कब से चले हैं, तो बोलेंगे 1 साल से, इतना साल से ऐसा। पर मैंने ये आश्चर्य देखा था हमारे दादी जी की, एक दिन दादी ने वही जो नए लोग बैठे हुए उनके सामने भी दादी जी ने, बुजुर्ग लोग थे, उनसे भी दादी जी ने ऐसे ही वायदा कराया, देखो भगवान एक पवित्र सृष्टि की रचना कर रहे हैं तो आप सभी इसमें सहयोग देंगे ना, बाबा को आपकी पैसा नहीं चाहिए, धन दौलत नहीं चाहिए, तो फिर क्या चाहिए, तो आप सहयोग देंगे ना, ऐसे दादी सबसे पहले तैयार करा के, तो फिर दादी मिसाल भी देती है कि देखो सब धर्म में ये रिवाज है वानप्रस्थ का, शास्त्रों में भी गायन है, तो आप पति पत्नी दोनों जो थोड़े से जीवन अभी बाकी है तो ये ईश्वर को अर्पित करते हुए तो पवित्र जीवन बिताएंगे, भगवान को ये सहयोग देंगे। तो इतना प्यार से दादी इन लोगों को कहते थे, और मैंने आंखों से देखा है कि कैसे दादी उन लोगों से हाथ उठाते थे, और पवित्र रहने का भी प्रतिज्ञा उसी समय पर दोनों को कराते थे, वो भी एक मिरेकल जो हम कभी ऐसा सीधा किसी को बोल के नहीं कर पाते हैं, जो दादी एक ही दिन में तो किस तरह से उन सबको पवित्र रहने की जो शिक्षा देते थे, ये भी एक देखने की और अनुभव करने की हमने सौभाग्य पाया। तो दादी जी का संकल्प, दादी जी का बोल और दादी जी की जो विशेष हर्षित मुख चेहरा जो है, क्योंकि मुझे याद है तो इस दुनिया में मीडिया वालों के लिए थोड़ा सा सबका एक नेगेटिव चलता है कि ये लोग बड़े ऐसे होते हैं, तो दादी जी मीडिया वालों के सामने भी ऐसे इन लोगों को खुश करा देती थी, तो खुद को भूल जाते थे कि भाई हम मीडिया वाले हैं, जैसे दादी के सामने जैसे छोटे बच्चे बन जाते थे। तो आप जानते हैं मीडिया वाले सदा ही यही पूछते हैं कि आपकी इतनी बड़ी संस्था, इतना सारा कार्य चल रहा है, पैसा कहां से आ रहा है, तो आप कहते हो हम किसी से डोनेशन तो लेते नहीं, विदेश से भी पैसा नहीं ले आती है, तो फिर कहां से आता है, तो कैसे ये सारा इतना बना रहे हैं, ये आम प्रश्न होता था इन्हों का। तो दादी हंसते हंसते पूछते थे कि आपकी फैमिली कितनी है, कितने बड़े हैं, कितने मेंबर्स हैं, तो कहते हैं मैं और हमारे 2 बच्चे पत्नी। अच्छा इतना छोटा सा है, तो आपका घर भी तो होगा, बोला हाँ हमने एक छोटा सा अपना घर भी बना लिया है। तो दादी कहती है आप एक और अपना एक छोटा सा घर भी बना लिया है, तो बाबा के लाखों बच्चे हैं तो ये सब मिल जाए तो ये मकान बनाना ये कुछ भी नहीं है। फिर भी दादी कहती थी देखो दादी जब कभी कोई ऐसा प्रोजेक्ट होता है जैसे ये डायमंड हॉल बनाना था, तो दादी जी केवल इतना ही कहती हैं कि रोज एक रुपया देना। तो मीडिया वालों को कहते थे आप दे सकते हैं ना एक रुपया रोज, दादी हाँ हाँ हम दे सकते हैं। तो बाबा के लाखों बच्चों को दादी कहती है सिर्फ एक रुपया देना, तो ये प्रोजेक्ट पूरा होने तक। तो दादी से पूछते हैं कितना लाखों बच्चे हैं, तो बाबा को इस समय पर 10 लाख बच्चे हैं। तो मीडिया वाले गिनना शुरू कर देते हैं, अरे दादी ये तो भगवान का काम है, ये तो हो रहा है, ये तो हो जाएगा। तो वो खुद ही अपनी प्रश्न का उत्तर ले लेते थे। तो हर बात में दादी इतना खुश करा देती थी सबको। तो कोई भी प्रश्न दादी के सामने उठता है तो दादी उसका जवाब दे देती थी, बहुत सरल रूप से, बहुत सहज रूप से। और दादी की विशेषता, जो हर्षित चेहरा जो है, जब दोबारा हमारा कॉन्फ्रेंस तो हर साल होता है, दादी जी जाने के बाद भी कॉन्फ्रेंस हुआ, तो खास मीडिया वालों को हमने पूछा कि देखो लास्ट ईयर भी हुआ था, आप लोग आए थे, इस साल भी आप आए हैं, तो आपको क्या डिफरेंस लग रहा है? तो उन्होंने कहा और तो सब ठीक था, भोजन रहना कॉन्फ्रेंस सब, पर जो हंसती हुई चेहरा जो दादी जी की जो थी वो इस बार मिसिंग है। तो दादी जी को जो हर्षित चेहरा जो है वो सबको इतना अच्छा लगता था, देखते ही कैसे भी व्यक्ति तो अपना सब कुछ भूल जाता था, बिल्कुल निचावर हो जाते थे। तो बाबा ने लास्ट अव्यक्त बाबा की मुरली में भी हम बच्चों को यही फिर से बाबा ने पक्का कराया था, चेहरा हर्षित रहना चाहिए, खुशी की चेहरा हो तो आप खुशी दूसरों को दे सकते हैं। ये कहा है, याद है आपको सबको। तो चेहरे से ही आप सब कुछ कर सकते हो। बाबा चाहते हैं कि भगवान आ चुका है ये आप कहना नहीं पड़ेगा, तो आपकी खुशी की चेहरा बता देगी कि भाई इनके पास भले दुनिया में अभी कहते हैं डॉलर के सामने रुपया जो है कम इसका वैल्यू हो रहा है, ऐसा वैसा बहुत कुछ हो रहा है, परंतु बाबा के बच्चों की खुशी में कोई कमी नहीं है। तो उनका फेस में जो खुशी है वो खुशी कौन सी है? वो पैसे की खुशी नहीं है, वो स्वयं भगवान की प्राप्ति का खुशी है। तो इसीलिए दादी जी ने हम सबका एक एग्जाम्पल बन के दिखाया कि खुश रहो तो आप दूसरों को खुशी दे सकते हैं। जब तक अपनी चेहरे में खुशी नहीं होगी तो हम दूसरों को क्या खुश कर सकते हैं? तो ये प्रैक्टिकली हमने अंत तक दादी जी का ये देखा। तो दादी जी के लास्ट फोटो भी हमारे मुन्नी बहन सब जगह में रखी हुई है, आप देख सकते हैं कि चेहरा देखते ही हमको वो खुशी मिल जाती थी। तो इसीलिए दादी एक प्रसन्न चित, एक संतुष्ट और सबको संतुष्ट करने वाली आत्मा। हमने दादी जी से एक प्रश्न पूछा एक बार, दादी आप भी अमृत वेले से रात 10-11 बजे तक जागते हैं, सेवा करते हैं, इतने लोगों से मिलते रहते हैं, तो आप भी कोई लक्ष्य रखे हैं क्या? जैसे हमको कहते हैं कि भाई आप चार्टली को आज ये लक्ष्य रखो, हम लोग इस तरह से पुरुषार्थ करते हैं। हमने कहा दादी आप क्या लक्ष्य रख के करते हैं सुबह से शाम तक? दादी ने उत्तर दिया कि देखो आत्माएं आते हैं दुआएं लेने लिए, तो दादी से मिलेंगे, दादी से दुआएं लेंगे, परंतु दादी भी यही चाहती है जो आत्माएं दुआएं लेते हैं वो खुश होकर के दुआएं मुझे देते हैं। दादी को कितना दिया, दादी को क्या किया, सेवा सुनाया, जो अपनी विशेषता है वो नहीं। दादी ने जो उनको दुआएं दी, खुशी दी, तो उससे खुश होकर के दिल से दुआएं जो देते हैं वो मेरी कमाई है। और मैं वो दिन गिनती हूं कि जो भी आत्माएं मेरे सामने आए वो खुश होकर के जाए, परंतु दुआएं भी दे के जाए, इतना मैं उनको खुश कर दूं। और जो भी दादी से मिलते हैं तो उनके मुख से, जैसे हम लोग बाबा से मिलते मेरा बाबा, मम्मा से मिलते मेरी मम्मा, वैसे दादी से भी जो भी मिलते थे उनके मुख से ये जरूर आता था कि मेरी दादी, मेरी दादी। तो दादी में भी ये जादू थी, जो दुआएं देना और दुआएं लेना। तो हम देने में तो होशियार है, हम भी करते हैं, इसका भला हो, इसको कुछ करो, ये करो वो करो, पर ये नहीं सोचते हैं कि दूसरी आत्माएं भी हमको दुआएं देके जा रहे हैं। तो इसलिए आज से हम भी सब यही अपने दिल में पक्का कर ले, जो कुछ भी हम करें दूसरी आत्माओं के साथ, कोई भी हो, कैसा भी हो, जैसे दादी से सब खुश होके जाते हैं, तो वैसे हमको भी, भगवान के बच्चे हैं अभी हर एक हम बाबा के बच्चे, बाबा की प्रत्यक्षता करना है तो हमको इतना खुश करना है जो वो दिल से हमको भी दुआएं देते जाए। तो ये हमारी दादी जी का एक वरदान है हम सबके लिए कि निस्वार्थ होके हर आत्मा को संतुष्ट करना, खुश करना, ये विशेष दादी जी की एक कला थी, जो अभी जिस दिन से हम सभी भी ये कला अपनाएंगे तो बाबा की प्रत्यक्षता बहुत दूर नहीं है। भले इन्होंने बताया कि घर घर में अभी बाबा पहुंच गया है, सारे भारतवर्ष में इस समय पर जो पीस ऑफ माइंड चैनल है अन्य आध्यात्मिक चैनलों से थोड़ा सा आगे हुआ है।
शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है, अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो, तुमको आना है, शिव पिता को अपने कर्मों के बलदान ही सतयुग में अब तुम्हें आना सतयुग में अब तुम्हें आना
भले बाबा ने घर घर में संदेश देने का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा है या अखबारों द्वारा कर रहे हैं और ये भी सबको मालूम हो जाएगा स्वयं भगवान इस धरती पे आ चुका है, परंतु उसकी अनुभूति केवल हम बाबा के बच्चों द्वारा ही होगा। इसीलिए आप सभी को बाबा ने यहाँ बुलाया है, बट्टी में आए हैं, तो आप इतना अपने अंदर भर के जाइए जो दुनिया में जिनको मालूम हो कि भगवान आ चुके हैं तो वो कहाँ है, किसको मिला है, तो आपकी चेहरा और आपकी जो सोच संकल्प जो उन लोगों को प्रत्यक्ष कराएगा, तो जो बाबा कहते हैं सारी दुनिया बस ये एक बात कह दे मेरा बाबा आ गया, ये जवाबदारी हम सभी बच्चों का है। ठीक है, सब तैयार है तो हाथ उठाइए, तो देखो बाबा के कितने बच्चे हैं तैयार। पर कराएगा बाबा तो बाबा आपके द्वारा कराएगा, तो आप अपने को इस बार बट्टी में ऐसा जैसे पवित्र आत्मा बन करके जाएंगे, खुश होकर के जाएंगे, तो आपसे बाबा ये कार्य कराएगा। ओम शांति।